सूरत कसस हमारे सामने है। थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे यहाँ एक बात मारूफ है कि हर बड़े इंसान के पीछे औरत का हाथ है। सूरत कसस में आपको मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत दिखेगी। शुरू से ही आपसे जिक्र करती आई हूँ कि बार बार कुरान पाक में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है, लेकिन अगर आप टाइम इरा के एतबार से, जिसको आप कहते हैं कि ऑर्डरली तरतीब के एतबार से वाकयात को देखना चाहें, तो इंशाल्लाह वो यहाँ सूरत कसस में आएंगे। और इसमें आपको चार औरतों का तذکرہ मिलेगा, मूसा की माँ का, फिर उनकी बहन का, फिर इसी तरह से उनकी बीवी का, और फिर उनकी बीवी जिसने उनके लिए फरमाइश की। यानी सूरत कसस पढ़ते हुए तो हमेशा यही फीलिंग आती है कि औरतें सब कुछ मनवा सकती हैं। शर्त यह है कि उनका एहसास हो जाए। यानी आपको अपने औरत होने के नाते से इसमें बहुत कुछ मिलेगा। फिर इसमें आपको चार किस्म के फितनों से भी मुलाकात करवाई देगी, जैसे सियासी फितना फिरौन की सूरत में आएगा, मजहबी रहनुमा दीन का जहां आता जाएगा बात करती जाऊंगी। और सारी बात इस सूरत में ये है कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से सबक ये सिखाया गया कि हालात के उतार चढ़ाव में डालकर अल्लाह लोगों से अपने काम लेता है, इस सूरत का भी यही पैगाम है। हालात कितने भी अबतर क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, अल्लाह अपना काम करवा के लेता है। वो खुदा ही क्या, या वो जात ही क्या, वो अल्लाह ही क्या जो फिरौन से डर जाए कि जिसको मूसा का इतना खौफ था कि हजारों लाखों बच्चे मरवाए, अल्लाह ने मूसा को उसी फिरौन के घर में पलवाया। ईमान को बढ़ाने वाली सूरत है अंदाज बड़ा दिलचस्प कहानी की तरह आपको लगेगा। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीम मीम तिलका आयात किताबिल मुबीन। ये किताबे मुबीन की आयात हैं। पहली ही बात देखिए, वाजे किताब। हम मूसा और फिरौन का कुछ हाल ठीक ठीक तुमको सुनाते हैं, ऐसे लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाए। आपके मेरे लिए शर्त लगा दी गई, पढ़ेंगे कोई, सुनेंगे सब, फायदा वो उठाएंगे जिनमें ईमान है। तो दुआ कर ले अल्लाह ऐसा ईमान दे दे कि जो इन बातों से फायदा उठाने वाला बनाए। वाक्य यह है कि फिरौन ने जमीन में सरकशी की और इसके बाशिंदों को गिरोहों में तकसीम कर दिया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी फिरौन की, फिरकों में बांटना, क्लास सिस्टम में रखना, फर्स्ट ग्रेड अपग्रेड व थर्ड क्लास लोग। ये याद रखिए, ये जालिम हुक्मरानों का तरीका है हुकूमत होता है। वो लोगों को आपस में लड़ाते रहते हैं ताकि लोग उनकी खराबियों पर नजर ना रखे। इनमें से एक गिरोह को जलील करता था और इसके लड़कों को कत्ल करता और इनकी लड़कियों को जीता रहने देता। फिल वाके वो मुफसिद लोगों में से था और हम ये इरादा रखते थे कि मेहरबानी करें इन लोगों पर जो जमीन में जलील करके रखे गए थे। कौन थे? उस दौर के मुसलमान लोग जालिम हुक्मरान के शिकंजे में थे। बस अल्लाह ने इरादा कर लिया। दुआ कीजिए अल्लाह आज के मुसलमानों के लिए भी इरादे कर ले और इन्हें पेशवा बना दे और इन्हीं को वारिस बनाए और जमीन में इनको इक्तदार बख्शे और इनसे फिरौनों हामान और इनके लश्करों को वही कुछ दिखला दें जिसका उनको डर था। अब तरीका कैसे? अब यहाँ फिर बड़ी स्पिरिचुअल बात है। अल्लाह ने उस दौर के मुसलमानों की तकदीर बदलना चाही, गुलामी से निकाल कर उनको गलबे पे लाना चाहा। उसका तरीका कहाँ से हुआ? एक बच्चे की पैदाइश से, जिसको लोग मूसा कहते हैं। आज भी यही है। आपको मुझे नहीं पता आज के दौर में पैदा होने वाला कौन सा बच्चा, किस हॉस्पिटल, किस वार्ड में पैदा होने वाला बच्चा कल उम्मत मुस्लिमा के लिए कितना बड़ा लीडर साबित हो। शर्त यह है कि माँ उम्मे मूसा हो। आइए उस माँ का जरा इशारा पढ़ते हैं। और आज के हमारे इस पारे की जो काबिले तकलीद हस्ती हैं वो उम्मे मूसा हैं। इन आयतों पर हम बात करेंगे। क्या उस माँ की कुर्बानियां थी? वौहैना इला उम्मी मूसा नरदी फैजा खिफ्ती अलैहि फल्की फिल यम्मी वला तखाफी वला तहजनी। हमने मूसा की माँ को इशारा किया, नबी नहीं थी पर नबी की माँ थी। अल्लाह ने उनको इशारा किया, क्या कहा? किसको दूध पिला। एक औरत का बहुत बड़ा ऑनर है कि बच्चे को दूध पिलाए। क्या ये इशारा सिर्फ मूसा की माँ को किया गया? नहीं, पीछे पढ़ चुके हैं, वल वाली दाद युर्दे ना औलाद अहुन हवलैनी कामिलैन। औरत का बच्चे को दूध पिलाना ये बच्चे का हक है माँ के ऊपर। जो औरतें बिला वजह नहीं पिलाती उनके लिए एक हदीस है, यदि खौफजदा करने वाली रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास दो लोग आए और मुझे अपने साथ ले गए। इशारा है वाकया मेराज की तरफ। वाकया मेराज में आपको मुख्तलिफ लोगों को अजाब और नेकियों की सूरत में फायदा पाते हुए दिखाया गया था। आपने फरमाया कि मैंने वहां कुछ औरतों को देखा जिनके पिस्तानों को सांप डस रहे थे। पूछा कि ये कौन सी औरतें, फरमाया जो अपने बच्चों को बिला वजह दूध नहीं पिलवाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने ये जिस्म, ये सीना बच्चों के लिए दिया था, माँ ने इसको खूबसूरती की जीनत का वजह बना ली। और मजबूरियाँ और बात है, मैं इस पर नहीं बात करती कि क्या वजह, डॉक्टर ने कह दिया, माँ बीमार है, दवा का असर, वो और चीज़ें, लेकिन सिर्फ अपने फिगर को सजाने संवारने के लिए इस तरह की चीज़ से बच्चे को महरूम करना, ये भी एक नस्लों के बिगाड़ की जरिया बनी। जब माँ नेक होती है, अपना दूध देती है, आधा तो बच्चे का वही काम हो जाता है। अल्लाह माँ को भी नेक बनाए और बच्चों को भी नेक बनाए। फिर जब तुझे इसकी जान का खतरा हो तो इसे दरिया में डाल दे और कुछ खौफ और गम ना कर। क्यों ना करे, माँ है आखिर। बच्चे को दरिया में डालते हुए अल्लाह करे गम ना कर, खौफ ना कर। आगे आप देखेंगे यही सूरत आह में पढ़ चुकी, यही लफ्ज़ अल्लाह इसके बच्चे को कहेगा, मूसा को, फेंक दे ऐसा और डर ना, और मेरे पास पैगंबर और रसूल डरते नहीं है। तो माँ और बेटे की आजमाइश है, हम इसे तेरे ही पास ले आएंगे, ये अल्लाह का वादा है, और इसको पैगंबरों में शामिल कर देंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने इसे दरिया में से निकाल लिया ताकि वो इनका दुश्मन और इनके लिए सबबे रंज बने। क्या पता चला, हर गिरी पड़ी चीज नहीं उठानी चाहिए, फायदे की सोच के उठाई थी और आगे देखिए कितनी बड़ी आजमाइश बन गई। इन्ना फिरौन व हामाना व जुनूदहुमा कानू खातिईन। वाकई फिरौन और हामान और इनके लश्कर अपनी तदबीर में बड़े गलतकार थे। फिरौन की बीवी ने इसे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, क्या अजब है कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे बेटा ही बना लें। और वह इंजाम से बेखबर थे। क्या पता चला, फिरौन जैसा जालिम और सख्त दिल शौहर ही क्यों ना हो, अगर बीवी आसिया जैसी हो तो अच्छा मशवरा देगी, घरों में खैर जरूर आएगी। होता क्या है कि जब बीवियों को दीन मिलता है और अभी शौहरों तक नहीं पहुंचा होता, बीवियां तो बड़े जज्बात में, जोश में जाकर सुनाती हैं, आज कुरान में ये आया, आज ये सुना, वहां से डांट पड़ती है, घर का माहौल थोड़ा अबतर है, बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी बातें सुननी पड़े और बाद में उसका अच्छा नतीजा निकले, दीन के लिए सुन लेनी चाहिए। और यहाँ ये भी बात है कि उस औरत ने इस बच्चे को देकर आंखों की ठंडक कहा, अल्लाह ने बात पूरी की। शुरू में पढ़ा है दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है, अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए। आसिया ने कहा, अल्लाह ने ठंडक बना दी। रिवायात से पता चलता है कि फिरौन ने कहा था, हाँ तेरी आंखों की ठंडक होगी मेरी नहीं। और कहा जाता है कि अगर फिरौन ये जुमले ना बोलता तो मूसा उसकी भी हिदायत का जरिया बन जाते। तो क्या पता चला, गलत बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्या पता कबूलियत का वक्त हो और अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले। अब माँ का दिल अल्लाह के हुक्म पे चल तो पड़ी, लेकिन वस बहा फुआद उम्मी मूसा फारिगा। इधर मूसा की माँ का दिल उड़ा जा रहा था, वो इसका राज फाश कर बैठती, अगर हम इसकी ढारस न बंधा देते। अपने आप पे ले, आपका बच्चा दरिया की मौजों के जद पे और आप सफर से बैठी हुई हैं। दिल चाहेगा ऐलान कर दूं, जिसको पकड़ो अरे पकड़ो, मेरा बच्चा डूब रहा है, वो मेरा बच्चा है। कितना सब्र किया उस माँ ने, क्यों? ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। इसने बच्चे की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे जा। अब देखिए बहन का किरदार, चुनाचे वो अलग से इसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता तक न चला। और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थी। कहते हैं 3 दिन का रोजा रखा मूसा ने बचपन में, अल्लाह आलम। हम कहते हैं हमारा बच्चा 3 घंटे नहीं भूखा रह सकता, डॉक्टर कहते हैं ये बीमार हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो इतना ना उस बच्चे को लालची करें कि वो हर वक्त दूध ही मांगता रहे। ये याद रखिए, ये बचपन से, day 1 से बच्चे की तरबियत आप कर सकती हैं। ईटिंग हैबिट दुरुस्त कर दीजिए, बाकी चीजें काफी तक वैसे ही ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। खैर ये हालत देखकर उस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता बताऊं जिसके लोग इसकी परवरिश का जिम्मा लें और खैर ख्वाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को इसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था। मगर अक्सर लोग इसको नहीं जानते। क्या नहीं जानते? आइए थोड़ा सा मैं मूसा के किरदार पे बात करते हैं। आप देखिए कि अल्लाह ने कहा इस बच्चे को दूध पिलाओ, माँ ने दूध पिलाया, कहा अब इसको दरिया में डाल दो, डाल दिया। अब कहा ये बहता हुआ जा रहा है, दुश्मन के घर जाने दो। इसको कहते हैं इताअत। उम्मे मूसा के अंदर इताअत का जज्बा था, अल्लाह को भी मानती थी, अल्लाह की बात को भी मानती थी। और जो आगे बढ़ना चाहता है ना जिंदगी में, चाहता है कि अल्लाह उससे भी कोई ऐसा बड़ा काम ले, तो उसको भी इताअत सीखना पड़ेगा। रूल्स को फॉलो करने वाले बहुत आगे जाते हैं। और रूल्स को सबोताज करके उसको खराब करके रहने वाले जो कर रहे होते हैं उसको भी बर्बाद कर देते हैं। हमारा हाल अमूमन क्या है, इतात के मौके पर हमें एतराजात सूझते हैं। याद रखिए, जहां इतात मुश्किल लगे और एतराज सूझे तो अंदर ईगो का इशू है, अनह का मसला बनती है। बात तब आता है, अल्लाह ताला में मूसा के किरदार से आपको मुझे क्या सिखाता है, यानी आज मैंने आपने किस बात पे गौर करना है कि बात समझ आए या ना आए, मान जाओ। देखिए, उस वक्त मूसा की माँ को हिकमत समझ आई होगी बच्चे को दरिया में डालने की, नहीं आई होगी ना। वो तो कहती होगी मेरे घर में महफूज है, देखो चारों तरफ दुश्मन फिर रहे हैं, बच्चे को ढूंढ रहे हैं, मैं माँ हूं, मैं छुपा लूंगी, मैं अंदर ले जाऊंगी, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगी। कितने जज्बाती डायलॉग बोल सकती थी, अल्लाह जी आप क्या कह रहे हैं, दरिया में डाल दूं ताकि दुश्मन फौरन ले जाए, और चाहे दुश्मन तो ले ना ले ये तो पानी में डूब जाएगा। वल्लाह ही अगर उम्मे मूसा इतने इतराज कर रही होती तो बच्चे ने डूब जाना था। हम तो बाज़ बच्चे को बेबी सिटिंग में नहीं देते, नहीं नहीं मेरा बच्चा मेरे पास ठीक है। तो याद रखिए, बात मान जाए, हम दीन के नाम पर बाज़ औक़ात अपनी मर्जियां मनवाते हैं, समझौते करवाना चाहते हैं, ब्लैकमेल करवाना चाहते हैं। जब हम दुनिया की थोड़ी सी चीजों को रूल्स और रेगुलेशन के बगैर लेते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, आज उम्मत मुस्लिम इसकी मुंह बोलती तस्वीर है। आप देखिए कि दुनिया के मामला देखिए और दीन के मामला देखिए, आपको इधर समझ आएगा। फिर दूसरी बात इससे एक और समझ आती है, और वो क्या है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन की मिसाल उम्मे मूसा की है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उजरत भी पाए। क्यों उजरत पाई, क्योंकि उसने अल्लाह की बात मानी। उम्मे मूसा ने अल्लाह की बात मानी, महल में पहुंच गई, कहां थी और कहां पहुंच गई। बात ये है, आज मैं और आप अल्लाह की जितनी बात मानेंगे, अल्लाह ने पता नहीं आपके मेरे लिए क्या मुकाम रखा हुआ है। हम सिर्फ अपनी जल्दबाजियों और अपनी अना की वजह से आगे मजीद जाने से रुक जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इताअत अता फरमाए। अब मूसा की जवानी, वलम्मा बलगा शुद्दहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब मूसा अलैहि सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और इनकी नश्वोनुमा मुकम्मल हो गई तो हमने इसे हुक्म और इल्म अता फरमाया। हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। एक रोज वो शहर में एक ऐसे वक्त पर दाखिल हुए जबकि अहले शहर गफलत में थे। वहां उन्होंने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक उनकी कौम का था और दूसरा उनकी दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता था। इसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ इसे मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको एक घूंसा मारा और इसका काम तमाम कर दिया। यह हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा, ये तो शैतान की कार फरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कुन है। फिर वो कहने लगे, दुआ देखिए मूसा की, रब्बी इन्नी ज़लम तो नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल ग़फ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला, मेरी मग़फ़रत फरमा दे। चुनाचे अल्लाह ने इसकी मग़फ़रत फरमा दी, वो गफूर रहीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अहद किया, ऐ मेरे रब, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया, इसके बाद मैं कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। यहां तक देखिए तो क्या पता चला, अल्लाह ने पीछे बात की थी हुक्म और इल्म की, मूसा अलैहिस्सलाम का ये फेल हिकमतों से भी भरा हुआ है और इल्म की बात भी है। और हिकमत किसको कहते हैं, बर वक्त सही फैसला करना, बर मौका मुनासिबत से करना। आप कहते हैं सिर्फ बात है? नहीं, हर चीज, क्या बोलना है, इस वक्त क्या पहनना है, आज क्या खाना चाहिए, आज इस वक्त क्या करना है, ये सारी हिकम लेनी है। आप कह लें कि इल्म को हजम करने का नाम हिकमत है। बास लोग इल्म में बहुत आगे पहुंच जाते हैं, हिकमत एक माशे की भी नहीं होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसमें ले चले। एक और बात इससे क्या पता चलती है कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। दूसरे दिन क्या हुआ, आइए देखिएगा। फसबह फिल मदीनति खाइफा, दूसरे रोज वो सुबह सवेरे डरते हुए हर तरफ से खतरा भांपते हुए शहर में जा रहे थे कि यकया क्या देखा कि वही शख्स जिसने कल इसे मदद के लिए पुकारा था आज इसे फिर पुकार रहा है। मूसा ने कहा कि तू तो बड़ा ही बहकावा आदमी है, यानी तेरा तो काम ही लड़ना झगड़ना है, कल तो किसी और से लड़ रहा था, आज किसी और से। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे तो वो पुकार उठा, ऐ मूसा कि आज तू मुझे इसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका। देखिए, इसको कहते चोर ऊपर से छिलितर। कल भी मूसा ने इसकी मदद की, आज भी मांग रहा है, लेकिन जब मूसा ने मदद से इनकार किया तो इल्जाम तराशियों पर आ गया। तू इस मुल्क में जब बार बनकर रहना चाहता है, इसलाह करना नहीं चाहता, इसके बाद एक शख्स शहर के दूसरे सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहां से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूं। ये खबर सुनते ही मूसा डरते और सहमते हुए निकल खड़े हुए और उन्होंने दुआ की, काला रब्बी नजिनी मिनल कौमिल ज़ालिमीन, ए अल्लाह मुझे जालिमों से बचा। अब यहाँ देखिए कि इसने हिस्से में बहुत सारी अमल की बातें। पहली बात देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर दूसरों की मदद का जज्बा कितना बड़ा हुआ है। अभी इस शख्स की मदद की है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि मदीन में जाकर कुछ और तरह से मदद कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि मोमिन नफा बख्शने वाला होता है, प्रोडक्टिव होता है, वो लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनता बल्कि लोगों के बोझ को उठाता है। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने मूसा के मिस्र से निकलकर मदीन पहुंचने का ये एक हंगामी तरीका कार इख्तियार किया। कत्ले खता हुआ और मिस्र में ये होता था कि कत्ल की सजा में कत्ल था, तो किसी फिरौन ही के घर वालों में से या उसके दरबारियों में से किसी ने मशवरा दिया कि भाग जा। इससे पता चलता है कि जब मुसलमान सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ते हैं, अल्लाह दुश्मनों के घर से ही उनके लिए मददगार पैदा कर देता है। फिर अगली चीज़ इससे ये पता चलती है कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा प्लानिंग ना करना भी हिकमत होती है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के सफ़र को प्लान करते, शॉपिंग करते, सहरा में क्या जूते पहने जाएंगे वो पहनते, तो आप देखिए कि कितना मुश्किल होता। अल्लाह बाज़ दफ़ा काम हंगामी नौयत के ले लेता है। दुआ कीजिए अल्लाह हमसे ऐसा ही क्यों काम दीन के लिए ले ले, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ लिया जा रहा है। आप देखिए, इल्ज़ाम चोरी का, इल्ज़ाम कत्ल का, दिल दुखा हुआ, पांव जख्मी और निकल पड़े, इतने मुश्किल हालात में मूसा ने फैसला किया। इसे एक और बात पता चलती है कि बाज़ दफ़ा लीडर्स को फौरी फैसला करना पड़ता है और वो उस वक्त वक्त नहीं होता कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझा जाए। हिकमत और इल्म अगर हो तो सही फैसले होते हैं, और अदरवाइज दूसरी तरफ। अब मूसा की जिंदगी का दूसरा दौर है। आप अगर वाकयात सुन रहे हैं, मूसा का बचपन पढ़ा, घर से निकले, महल में आ गए, जैसे हजरत यूसुफ को कनान से निकाल कर अजीज मिस्र के घर में रखा, तरबियत हुई, तालीम हुई, माँ के दूध का असर क्या था कि अंदर ईमान बढ़ा और फिरौन के घर के शाही प्रोटोकॉल से उनका कॉन्फिडेंस डिवेलप हुआ, जाके बात करनी आई, तालीम और तरबियत पूरी हुई। अब ये हिजरत का वक्त है। अगर नबी सल्लम की हिजरत से जोड़े तो इस वक्त जब आयतें पढ़ने लगे हैं, ये हिजरत मदीना की आयतें हैं। और याद रखिए, दीन के गलबे के लिए हिजरत करनी पड़ती है। आप तबलीग कर सकते हैं एक जगह बैठकर, इस्लाम को गालिब करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से जाना पड़ेगा। वजह क्या है कि जब तक आप अमली इकदाम नहीं करते, अल्लाह ताला की मदद भी नहीं आती। आइए पढ़ते हैं। अब इसमें आपको बड़ा घरेलू सा अंदाज दिखेगा स्टोरी का। फरमाया, वलम्मा तवज्जह तिल्का मदयन, मिस्र से निकलकर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। लिख लीजिए, ऑप्टमिस्टिक। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ईमान वाला अल्लाह से बदगुमान नहीं होता। डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, ये नहीं कहा मेरी बख्तबख्ती और नाउज़ बिल्ला क्या कुछ हो गया, बस कहा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे गाइड करेगा। यही एक ईमान, एक मोमिन का सरमाया हयात होता है कि मेरे रब ने मेरे लिए जो फैसला करना है ना, वो बड़ा अच्छा होना है। करें फिर जम जाए, फिर डट जाए, फिर कह दें जो भी हुआ इस्तखारा कीजिए, चल पड़िए। याद रखिए कि जो अल्लाह से मदद मांगना होता है ना, इसको आज की जुबान में इस्तखारा कहते हैं। तो अल्लाह से अपने मामलात का इस्तखारा किया करें। कभी कोई फैसला करना हो, दिल नहीं जम रहा, कुलक है, वो इधर कहना चाहिए कि हेयर और देयर, इस्तखारा करें, टूट के दुआ मांगे, अल्लाह मैं इन्ना कत आलम हो, तू जानता है, इन्नी ला आलम, मैं नहीं जानती। आप पूरी इस दुआ इस्तखारा पढ़ के देखे, उसमें ऐसे जैसे अपने हाथ लगा के डाल देते हैं, हैंड्स अप, खुद सपुर्दगी, सब मिशन, अल्लाह मैंने अस्तखीरु का बिखैरी का व बिल्मी का व कुदरती का व सलू का, यानी ऐसे बंदा तड़प के मांगता है। आप जब अल्लाह से मदद मांगेंगे, हदीस में आता है जो इस्तखारा करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। और मैं कहती हूँ वो लोग बड़े जुरतमंद हैं जो बगैर इस्तखारों के जिंदगी के फैसले करते हैं। हर अहम काम पर इस्तखारा कीजिए। आप रोज जहाँ आ रहे हैं सुबह उठ के इस्तखारा कर लें, नहीं ये कर चुके आप, ये बहुत है। नमाज पढ़नी, इस्तखारा करें, नहीं भी इस्तखारा करेंगे नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। अहम काम, बड़े काम, फैसले, डिसीजंस, दो चीज़ों में से एक चूज करनी है। रिश्ता आ गया है, घर लेना है, दीन का काम, इधर करूं, उधर करूं, यहां करूं। मैं कहती हूँ एक दिन में 10 इस्तखारे करने पड़े, वो भी कीजिए। आसानी से 2 नफिल पढ़कर वो दुआ पढ़ लीजिए, जो दुआ इस्तखारा है आपको आज की शीट के साथ भिजवाते हैं इंशाल्लाह। और इस पर पूरा एक छोटा सा सेशन है जिसमें पूरी दुआ इस्तखारा की बात है, इंशाल्लाह उसकी ऑडियो भेजते हैं, क्योंकि आजकल लोग इस्तखारे से डरने लग गए। कहते नहीं नहीं गैब मिल जाएगा। और कईयों ने गैरों से इस्तखारे कराने शुरू कर दिए, टीवी पे इस्तखारे, फोन पे इस्तखारे, इंटरनेट पे इस्तखारे, व्हाट्सएप पे इस्तखारा, स्काइप इस्तखारा, $50 का इस्तखारा, ये सब दुकानदारी है। आप और मैं अपने रब से खुद पूछे, मेरे रब मुझे बता मुझे क्या करना है। बंदा अल्लाह से पूछ पूछ के चले, अल्लाह आज बता ठीक है, कर अल्लाह और बता। जैसे मासियाँ होती हैं ना बड़ी ओबीडियंट सी, बाजी ये कर लिया अब क्या करूँ, आप कहते हैं बैठ जाओ आराम से, नहीं नहीं बाजी काम करना है, कर लिया अब करके बैठे, बाजी हो गया अब क्या करूँ, कितना प्यार आता है उस पर। और कोई नखरे करे, रोब डाले, अल्लाह के सामने मासी वाला रवैया अख्तियार करे, अल्लाह बंदा हाजिर है बात कर क्या करूँ, बंदी आ गई अब काम दे दे, सफाई करानी है वो करा ले, कपड़े धुलाने हैं वो धुला ले, इस दर्जे की अपने अंदर आजिज़ी डाली है, अल्लाह आपके सामने इतनी खैर की राह खोलेगा आपको चुनना मुश्किल हो जाएगा। और एटीट्यूड रवैये और अपनी अना के बुत के साथ दीन में आएंगे तो बस जो कर रहे हैं वो बेगम साहब बन के उतना ही बहुत है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जैसे मूसा को अल्लाह ने ठीक रास्ते पर डाला, अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि इस रमज़ान के बाद हमने क्या करना है। ये मेरे लिए भी अहम है, ये आपके लिए भी अहम है, ये दुनिया के हर उस बंदे के लिए अहम है जो इस वक्त कुरान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त आप कुरान से जुड़े हैं, आपका दिल दिमाग कैसे हाजिर है मुझे आपके चेहरों से दिखता है। लेकिन इधर ईद का चांद दिखेगा साथ ही शैतान का चांद भी निकल आएगा, और अल्लाह ताला हमें उसके फितनों से बचाएगा। अब मूसा पहुंचते हैं, वलम्मा वरदमा मदयन, और जब वो मदीन के कुएं पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इनसे अलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक कि ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल कर ले जाएं। और निकली क्यों है घर से? क्योंकि हमारे वालिद बहुत बूढ़े आदमी हैं। अल्लाह अकबर, यानी मजबूरियों में घर से निकली तो थी लेकिन मजबूर नहीं हुई। मर्दों से इख्तलात नहीं करना चाह, मिक्सिंग पसंद नहीं की, और अपने आप को मर्दों से बेहतर साबित नहीं किया, कंधे से कंधा और शाने से शाना मिलाने की कोशिश नहीं की, पाँव से पाँव मिलाने की कोशिश नहीं की। आज भी यही हुक्म है, अल्लाह ने औरत को बाहर के कामों की जिम्मेदारी नहीं दी, जॉब नहीं करती, कमाती नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। कभी हालात की चक्की में पिसकर बंदा अगर किसी मजबूरी पे घर से निकले तो हमेशा इन औरतों को अपने लिए रोल मॉडल बनाए कि मर्दों में नहीं घुस रही। आज इबादत के नाम पे हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए औरतें जाके मर्दों के अंदर कूद रही होती हैं। तो असल बात औरत की हया है, जहां इस पे आपको मुझे बहुत कुछ दिखेगा इंशाअल्लाह ताला, इससे हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, का तुम्हारी क्या मदद करनी शुरू कर दी। यहां से आपको मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार दिख रहा है, एक सच्चा मोमिन हमेशा दूसरों के दुख बांटने वाला होता है। कहने लगे कि अच्छा ठीक है तुम पीछे हो जाओ मैं काम कर देता हूँ। अब क्या हुआ, पानी पिला दिया, कुछ मांगा नहीं, कोई हिदमत नहीं। आप देखिए सफर के थके हुए, कत्ल का इल्जाम, पता ही नहीं जाना किधर आना किधर, और खिदमत करने के लिए तैयार। हम थोड़ा सा काम कर ले हम थक जाते, हम यहां से पढ़ के जाते हैं, हम कहते हैं पीछे हो जाओ अब कोई ना बात करें, पढ़ आए हैं आज 12 पढ़ के आए हैं, सवा पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। ये टोन मैं आपको खुश करने के लिए बोल रही हूँ, मेरी ये टोन नहीं है। तो थोड़ा सा काम करें थके नहीं। आज के इस पारे की जो आपकी मेरी टाइम टिप है ना, इंशाल्लाह आगे सूरतन कबूत से भी जोड़ेंगे, यहाँ भी है मेहनत की आदत डालें, बी हार्ड वर्किंग, बी हार्ड वर्किंग। अल्लामा इकबाल ने आज से कई 200 साल पहले शेर कहा होगा कि रुलाती है मुझको जवानों की तन आसानी। खुद भी हार्ड वर्किंग बनिए, और ये टिप में लिख दें ये बात भी, खुद भी और अपने बच्चों को भी मेहनत की आदत डालें। आज देखिए जिस्मानी मोटापा, अंदर ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम स्ट्रांग है, मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत के नतीजे में अल्लाह ताला उनको क्या दे रहा है ये हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या नहीं चाहिए ये बताइए, सब कुछ चाहिए। तो क्या किया, फसका लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, ये सब करके क्या किया, फिर वो एक साय की जगह पर जा बैठे और बोले, रब्बी इन्नी लिमा अंज़ल्ता इलैय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे मैं इसका मोहताज हूँ। मुफस्सरीन कहते हैं कि कभी ऐसा वक्त जिंदगी में आए, सभी कुछ चाहिए, जिसको आपकी मेरी जुबान में रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए था ना, सफर के थके हुए जब सफर से जाते हैं क्या दिल चाहता है, बस अब जल्दी से जगह मिल जाए, अब खाना मिल जाए, अब बस सोने को जगह मिल जाए, ना कुछ था ये दुआ मांगी कि अल्लाह जो भी दे मुझे वो चाहिए। ये आपकी मेरी इस बारे की दुआ भी है कि अल्लाह मुझे तुझसे हर चीज ही चाहिए। कभी ऐसा होता है कि लफ्ज भी साथ नहीं देते, उस वक्त भी ये मांगी। कोई ऐसी घबराहट की घड़ी होती है, समझ ही नहीं आता क्या मांगे, वो सारे गाने नज़में भूल जाती हैं जो शेरों की सूरत में दुआएं याद की होती हैं, नहीं याद दिल की पुकार से। देखिए अम्मा युजीबुल मुस्तरा, पूरे पारे में आपको दुआ का थीम मिल रहा है। उधर मुस्तर की दुआ थी, इधर मूसा अलैहिस्सलाम से मुस्तर कोई हो सकता है? थके हुए हारे उन लड़कियों से नहीं कहा कि कोई दो यूरो मुझे भी दे दो, मैंने तुम्हारा काम तो किया है। इन्नी लिमान ज़लत इलैय मिन खैरिन फ़कीर, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की खैर पा लेता है तो उसको दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। अब देखिएगा कि दुआ कबूल कैसे होती है, वही पांच में से एक चीज़ कौन सी मूसा के साथ हो रही है? फर्स्ट वन, पांच में से पहला अमल मूसा के साथ हो रहा। क्या कुछ देर न गुजरी कि इन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है इसका अजर आपको दें। आप मत मांगें, अल्लाह लोगों के दिल में खुद डाल देगा। मूसा जब इसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने कहा, कुछ खौफ ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। बस कहते हैं कि ये शुएब अलैहिस्सलाम थे, कोई कहता है कि और थे, लेकिन नाम इनका शुएब ही आता है। बाप ने मूसा अलैहिस्सलाम को परख लिया, कहा फिक्र नहीं कीजिए आप आ जाए, और जब एक मुल्क की हद से आगे निकल गए तो फिर अल्लाह ताला ने उस मुकदमे से भी उनको बचा लिया वक्ती तौर पे। अब सवाल पैदा था कि एक गैर मर्द एक घर में रहे कैसे कि जिधर बूढ़ा बाप है और बच्चियां हैं, बेटा कोई है नहीं। उसका हल, इन दोनों में से एक ने अपने बाप से कहा, बात जानी इस शख्स को नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत और अमानतदार हो। मजबूती कहाँ से देखी, अकेले वो पत्थर उठा के कुएं से एक साइड पे कर दिया जो कई मर्द उठाते थे, स्ट्रांग थे। और दूसरी बात, अमानतदार, नजर उठा के लड़कियों की तरफ नहीं देखा कि जो किसी की बेटी की पराई औरत की तरफ ना देखे वो किसी और को क्या देखेगा। यहां से पता चला जिसको जिम्मेदारी दें ये दो खूबियां देख ले, मजबूत भी हो, काबिल भी है और अमानतदार भी है, जिम्मेदारी निभाए। पता चला सब सीख सिखा के भाग गया, सब ले दे के चला गया। तो ये दो खूबियां हजरत यूसुफ में भी पीछे दिखी, यहां मूसा में। आप दोनों का तकाबुल भी साथ साथ यकीनन जहनों से कर रहे होंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम को बाप ने जॉब की ऑफर कर दी। उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक मेरे यहां मुलाजमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर सख्ती करना नहीं चाहता। तुम इंशाल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं इसके बाद फिर कोई मुझ पर ज्यादती ना हो, और जो कुछ कौलो इकरार हम कर रहे हैं अल्लाह इस पर निगेबान है। यहाँ से अब चंद बातें अमल की खातिर हम डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे आगे, क्योंकि फिर वहां से मूसा की जिंदगी का तीसरा दौर शुरू हो रहा है। पहली बात आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर चलते हुए जब मदियन पहुंचे, कैसे गैर महसूस तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। दूसरी बात जो इसमें मिलती है वो औरतों की हया है। हया के दायरे में रहकर वो मजबूरन काम के लिए निकली, लेकिन उन्होंने गैर मर्दों से बिला वजह बात करनी पसंद न की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जो बुलाने के लिए आई तो मूसा ने कहा, मेरे आगे नहीं चलना, पीछे चलना। तो कहा, रास्ता कैसे बताऊंगी, पीछे क्यों चलो, ताकि तुम्हारे जिस्म पे नजर ना पड़े, पीछे कैसे चलो। रिवायत में आता है कि उस औरत ने कंकरियां ली, मूसा ने कहा जिधर मुड़ना होगा उधर कंकरी फेंकती जाना, मैं उस तरफ मुड़ जाऊंगा। ये है असल में जिसको अमानत कहते हैं। अल्लाह हमारे मर्दों को, हमारे बेटों, हमारी बेटियों को ऐसा बाहया बना दे। फिर इसके बाद आप देखिए, बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं की, नजरों की खयानत नहीं की, तो बाद में माल की भी खयानत नहीं की। फिर उसके बाद देखिए कि बेटी ने बाप से कहा कि इसको मुलाजम रख ले। इससे पता चलता है कि औरत का मशवरा अच्छा होता है। पीछे भी आपने हजरत आसिया का मशवरा पढ़ा एक बीवी होने के नाते, यहाँ एक बेटी का मशवरा है, तो औरत से मशवरा करना चाहिए। औरत कम अकल नहीं होती, बेवकूफ नहीं होती। बास कहते हैं हाँ औरत से मशवरा मांग लो, करो वो जो कहती है उससे उलट, तो ये औरत की बेइज्जती करने वाली बात है। फिर उसके बाद दूसरी बात आप देखिए कि इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की जॉब के लिए जो अल्लाह ने रास्ता बनाया गैर महसूस तरीके से हुआ। एक दिन भी जॉबलेस नहीं रहे, एक दिन भी पेलेस नहीं रहे। अल्लाह से मांगिए, मुत्तकी हो, हया हो, अल्लाह ताला माल की हिफाजत फरमाएगा। फिर अगली बात देखिए कि शादी का सबब पैदा कर दिया, ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि जब अल्लाह सुबहाना तला पे आप नजरें रखते हैं ना, तो आपके हर तकाजे को पूरा करना अल्लाह की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद देखिए कि बेटी के बाप ने ये कहा कि तुम मेरे पास रहोगे 8 साल, हाँ 10 रह लो तो तुम्हारी खुशी है, इससे क्या पता चलता है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं घर दामादी, शादी के बाद अगर हालात ऐसे हैं कि लड़की के घर में माँ बाप उसके माँ बाप के साथ रहना पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं। हमारे यहाँ बहू का खिदमत करना तो बड़ा मारूफ है, और अगर दामाद करके जाके कुछ ससुराल की खिदमत करे, कहते हैं नीचे लग गए, पता नहीं किसके नीचे लगते हैं, और तुम तो घर दामाद हो गए और तुम तो बिल्कुल ही मर्द नहीं हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बेटों को बताइए जैसे हम चाहते हैं कि हमें वो माँ बाप समझे, खिदमत करे, इज्जत करे। और हमारे कल्चर में दामाद क्या है, अल्लाह की पनाह, शेर से कम डरते हैं, दामाद से ज्यादा डरते हैं। खौफनाक चीज, दामाद आ रहा है, सारे चूल्हे खोल दो, दामाद आ रहा है, आदमखोर है, ये भी पका लो, ऐसे समझते हैं कि पता नहीं वो कोई पहलवान साहब है जिन्होंने खाना है, ये ना खराब हो वो ना हो। देखिए, रिश्तों को उनकी जगह पे रखें, मोहब्बत दें, इज्जत दें, इज्जत ले उतना करें जो हमेशा कर सकते हैं। मुझे किसी की बात याद आती है, लाड और चाव वो देखो जो हमेशा देख सको। हम कहते हैं शुरू के दिन, आज का दिन, कल का दिन, और शादी के दिन तो वाकई वो दनदनाते हुए आते हैं और ऐसे लगता है पीछे हो जाए, जो मिलेगा लेके चले जाएंगे, तुम्हारी बेटी भी लेंगे। तो रिश्तों की खूबसूरती भी है इसमें। फिर इसके बाद एक और छोटी सी चीज नोट कर लीजिए, और वो क्या है, मूसा से रिश्ता कर रहे बाप, ना डिग्री देखी, ना जॉब देखी, ना वीजा देखा, ना उसका क्लब कार्ड देखा, ना उसकी मेंबरशिप देखी, हमने आज शादी को कितना महंगा और मुश्किल कर दिया। निभी है कि नहीं, आप देखिए कितनी प्यारी निभ रही है, 10 साल पलक झपकने में गुजर जाएंगे। आप अपने बच्चियों के रिश्तों में जितने क्यूरियस होते हैं, जितनी बाल की खाल निकालते हैं, अल्लाह भी फिर उतने मुश्किल हालात में डालता है। अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, ईमान वालों को बनाइए। वक्त नहीं है, मैं आपको ईमेल में भिजवा सकती हूँ सैयद बिन मुसैयब की बेटी की शादी का किस्सा, कैसे खड़े खड़े उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने उस स्टूडेंट से कर दी थी कि जिसकी बीवी फौत हुई, तालिब इल्म थे, 2 4 दिन नहीं आए, किधर हो गए, किधर थे, कहा उस्ताद मोहतरम बीवी फौत हो गई, उसके लिए लगा, अच्छा बीवी फौत हो गई, चलो अल्लाह का हुक्म, इस वक्त तुम्हारी शादी नहीं हुई, बीवी नहीं है, कहा नहीं है, कहा मेरी बेटी से शादी करते हो, हैं आपकी बेटी, सारे शहर में शोहरत थी उनकी बेटी की, वक्त के खलीफा के साथ सैयद बिन मुसैयब का झगड़ा ही ये था कि वो इनकी बेटी का रिश्ता अपने बदकुमाश किस्म के बेटे के लिए मांग रहा था। तो इन्होंने कहा नहीं, जान पे बनी हुई थी कि ये कहीं खलीफा जबरदस्ती मेरी इतनी इल्म वाली और हिकमत वाली बेटी को ना मांग ले। इधर देखा, इल्म कहा, शादी करते हो, हाँ मैं, कहा आपकी बेटी से मेरी शादी, कहा हाँ, कहा अच्छा मुझे क्या और चाहिए, वहीं खड़े खड़े 2 4 लोगों को बुलाया और अपनी बेटी का निकाह पढ़ा दिया। उसने कहा कि इसको भी इधर रखें, मैं घर जाता हूँ, जरा माँ बहन बताऊँ घर में क्या हालात है। वो चले गए, वो घर गए, बात खत्म हो गई, शाम हुई, दरवाजा खट 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 खट, कौन, सईद बोल रहा हूँ, कहते मैं पहचानना ही नहीं है कौन सईद है, क्योंकि उस्ताद मोहतरम का नाम लोग प्यार से सैयद बिन मुसैयब प्यार से लेते थे। कहते फिर ना कोई, कौन सईद, दरवाजा सईद, हाय उस्ताद मोहतरम कांपने लग गए, कहते दरवाजा खोला, मेरी बीवी जिससे निकाह हुआ था, ऐसे हया की पोटली बनी बाप के पहलू में, तो उसको अंदर डालते हैं। कहते हैं मुझे तेरी बीवी को आज की रात अपने घर में रखना गवारा नहीं हुआ, क्योंकि तू शादीशुदा मर्द था, तेरी बीवी चली गई, तेरे लिए एक रात भी फितने की ना हो, और उसको अंदर भेज के बाहर से कुंडी लगा दी। ये शादियां करते थे बाप, वो तो घबरा गए, परेशान हो गए। बड़ा खूबसूरत वाक्य है ये, सच्चा वाक्य, इसको मैंने पूरी तफसीर में कोट भी किया हुआ है। आज शादियों को आसान करें, बेटियों बेटों की इज्जत ज्यादा प्यारी है, इतना सा दाग लग गया कयामत तक बंदा रोता रहे, अपने नामे माल के वो धब्बे नहीं मिटा सकता। जल्दी से जल्दी शादी कर दीजिए, इससे पहले कि आपसे कहे, और जब बेटा कहने लग जाए शादी करो, मैं कहती हूँ एक रात भी ना लगाए, एक जैसी मिलती है कर दें, लेकिन ये ना सोचे कि हूर पर ही लानी है, और हम उनके लिए पता नहीं क्या कुछ देखते हैं। इसीलिए आप देखिए कि बेटियां जो हैं वो फिर बैठी रहती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे कल्चर में भी ये बातें आसान हो जाएं।